फिर भी एक किसान हल चला रहा था, बीज बो रहा था और अकेला काम कर रहा था सुबह से लेकर शाम तक। किसानों को देखकर आश्चर्य लगा, ये क्या कर रहा है। 3 साल तक ऐसा चलता रहा, फिर बाकी किसानों से रहा नहीं गया और उसके पास गए और उससे कहने लगे कि तुम ये क्यों व्यर्थ श्रम कर रहे हो, क्योंकि अगले टोटल 12 साल बारिश तो होने वाली है, 3 साल तो वैसे ही पूरे हो गए। वो कहता है मैं खेती इसलिए कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कि 12 साल पूरा हो जाए और मैं भूल ही जाऊं खेती कैसी करनी है। अभ्यास के लिए मैं खेती कर रहा हूं, प्रैक्टिस। और ये बात पार्वती जी सुन लेती है और वो पहुंच जाती है अपने पति के पास और कहती है क्या आपने सुना कि 12 साल तो बारिश होने वाली नहीं है, परंतु फिर भी ये किसान, एक किसान अभी भी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, इसलिए कहीं वो भूल ना जाए और आप भी तो कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल के बाद डमरू बजाना ही भूल जाओ। तो शंकर जी को एकदम टेंशन आ जाता है और तुरंत अपना डमरू बजा लेते हैं और बजाना चालू कर देते हैं और बारिश हो जाती है। अभ्यास, प्रैक्टिस। आर्मी का जवान प्रैक्टिस करते रहता है, युद्ध हो या ना हो ड्रिल चालू रहती है हर दिन, सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या बनी हुई है। अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। जब तक अभ्यास नहीं, कोई भी आदत पक्की नहीं हो सकती। देहभान का अभ्यास इतना पक्का क्यों हो गया? क्योंकि कई बार हमने उसको रिपीट किया, पुनरुक्त किया, एक ही चीज बार 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 करते रहो, आदत बन जाती है। जैसे विकारों की आदत पक्की हो गई है, जैसे व्यर्थ की आदत पक्की हो गई है, जैसे परचिंतन की आदत पक्की हो गई है, जैसे झरमोई झगमोई की आदत पक्की हो गई है, जैसे किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया इधर उधर ताक झांक करने की आदत पक्की हो गई है, वैसे ही मौन की आदत डालनी है, वैसे ही एकांत की आदत डालनी है, वैसे ही अंतर्मुख की आदत डालनी है, वैसे ही स्वचिंतन की आदत डालनी है। और यह होगा अभ्यास से, निरंतर अभ्यास, सतत अभ्यास। जितना गहराई से अभ्यास होगा उतना ही और उतने ही नए संस्कार निर्माण होंगे। और संस्कार स्वतः काम करते ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चाहे कितने भी बजे सो जाओ, अपने आप आंख खुलेगी अमृत वेला। चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, परंतु जिसे मुरली चिंतन की आदत है वो मुरली चिंतन का समय कहीं से भी खींच कर निकाल ही लेगा। समय को चुराने की आदत, हमारा समय बहुमूल्य है, वेस्ट ना जाए। और अब संगम युग का समय भी समाप्ति की ओर है, समय अंतिम सांसें ले रहा है, कहीं हमारी गिनती उन आत्माओं में ना आ जाए कि भगवान आ गया, भगवान ने इतना पढ़ाया फिर भी हमारे हाथ खाली। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितना तुम समझते हो तुम्हारा जमा है बाप के खाते में उतना नहीं है, क्योंकि तुम केवल वो देखते हो जो पॉजिटिव है, वो तो तुम देख ही नहीं रहे हो जो कि निगेटिव होता है। सेवाएं की और उसका इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया कि वो पुण्य को भी खत्म कर दिया। अमृत वेला शक्तिशाली किया, परंतु दिनचर्या में एक दूसरे की ग्लानि की, निंदा की। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, यदि तुम किसी की ग्लानि करोगे तो तुम्हारी दुगुनी ग्लानि होगी, डबल। तो ये समय, ये ऋतु, ये काल, ये मौसम, ये वेदर, ये सीजन, ये क्लाइमेट पुरुषार्थ का है। इस पुरुषार्थ के समय में मैं क्या कर रहा हूं, स्वयं स्वयं से बात करनी है। कहीं इतना विस्तार तो नहीं हो गया कि जिसमें मैं खो गया, कहीं ऐसा तो न हो गया कि सेवाओं के घने जंगल में त्याग तपस्या और वैराग्य खो गया, कहीं ऐसा तो ना हो गया कि लौकिक में अलौकिक खो गया। करने क्या आए थे और क्या कर रहे हैं, किस लिए बाबा का बने थे और क्या मैं अब कर रहा हूं। हर सुबह अपने आप से प्रश्न पूछना है, ये नया दिन फिर मिला है, नया पुरुषार्थ का दिन, नया उमंग, नया उत्साह, नया सूरज, नई किरण, नया सवेरा, नया प्रकाश, सब कुछ नया जब है तो मैं नया क्या करूं। क्या उसी तरह दिनचर्या बिताऊं जिस तरह कल थी, क्या वैसा ही पश्चाताप अब भी करते रहूं जो कल किया था, क्या वही भूल फिर दोहराता रहूं जो भूल मेरे अंदर आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न करती है। क्यों शक्ति नहीं है, क्यों ताकत नहीं है, क्यों भूल जाता हूं कि ये भूल की थी और फिर वही भूल करता हूं। स्वयं स्वयं की जांच करनी, स्वयं स्वयं को देखना है। दूसरों को बहुत देख लिया, सत्युग त्रेता में दूसरों को देखने में समय गया, द्वापर कलयुग तो परचिंतन का ही समय था। यदि संगम युग में भी कौन क्या कर रहा है इसमें यदि समय जा रहा है तो ये बुद्धिमानी नहीं। सबसे पहले मुझे एक ही व्यक्ति का कल्याण करना है और वो कौन है, मैं स्वयं। सूफी संत बायजीद ने लिखा है कि मैं जब छोटा था तो सोचता था पूरे विश्व को बदल दूंगा, ऐसा उमंग उत्साह था, ऐसी दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई थी कि सोचता था सारे विश्व को बदल दूंगा, जहां जहां बुराई है वहां अच्छाई लाऊंगा, जहां असत्य है वहां सत्य लाऊंगा। परंतु जैसे जैसे बड़ा हुआ पता चला ये पॉसिबल नहीं है, मैं सारे विश्व को नहीं बदल सकता, मैं अपने समाज को बदलूंगा। और वो अपने समाज को बदलने में लग जाता है, समाज का एक एक व्यक्ति को ठीक करके रहूंगा। थोड़ा और बड़ा होता है, प्राउड हो जाता है और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये समाज को बदलना इतना आसान नहीं है। समाज को छोड़ो, मैं अपने परिवार को बदलना चालू करूंगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, और जोर से लग जाता है इन सबको बदलने में, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं, मेरी बात मानने वाले, मेरे अधीन हैं, इनको तो मैं कभी भी बदल सकता हूं। और आधा जीवन उनको बदलने में लगा देता है और वो कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया, अब पता चला कोई भी नहीं बदला उनमें से, केवल मैं एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूं और वो कौन है, मैं। ना तो मैं पति को, ना तो पत्नी को, ना तो बच्चों को, क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट लेकर आई है, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है, वो वही करेगी जो उसे करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि ये वो ही करे जो हमने किया था। एक कविता है जिसमें कवि लिखता है, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। वो तुमसे है तुम्हारे बच्चे, पर तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए अपनी इच्छाओं को उन पर थोपना नहीं। आप ज्ञानी हैं तो वो भी ज्ञानी बन जाए, ये भाव अच्छा है, पर जरूरी नहीं बनेंगे। इसलिए दूसरों से ध्यान हटा देना है। और उनके ज्ञानी बनने में एक व्यक्ति बाधा है, वो कौन? तुम स्वयं। तुम्हारा ही मोह बाधा है। मोह को हटा दो, वो तुरंत ज्ञान में आ जाएगा। वो जो सकाश दे रहे हैं उसको, उसमें भी मोह युक्त सकाश है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। इसके लिए सारा ध्यान बाहर से हटाकर अपने पर लगाना है। मेरा पुरुषार्थ मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये समय कौन सा है? तीव्र पुरुषार्थ का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मौसम है। सुबह अमृत वेला उठना, फिर मुरली सुनना, फिर भोजन याद में बनाना, फिर याद में भोजन खाना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना बीच बीच में, नुमा शाम का योग करना, रात्रि ज्ञान की थोड़ी चर्चा करना, बाबा को याद करना, चार्ट लिखना, सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। क्या कहा जाता है इसे? साधारण पुरुषार्थ। इसके नीचे तो नहीं है हम, सब साधारण, ये तो नॉर्मल पुरुषार्थ है। नियमित करना ये सब भी, तीव्र अर्थात ये सारा जो कुछ है इसको डबल कर देना। तीव्र अर्थात इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ जाए। इसकी जो लगन है अमृत वेले की, वो ठीक हो जाए। वो जो मुरली है, केवल इतना ना रहे कि मुरली क्लास में गए, बैठे, मुरली डायरी खोली, लिखी पॉइंट्स और चलो घर। कुछ कुछ माताएं सेंटर पर ही अपनी डायरी छोड़कर जाती है टेबल के नीचे, दूसरे दिन जब आती है लिखना, डायरी बंद, सेंटर पर डायरी, घर। ज्यादा टेंशन घर नहीं लेके जाना, ऐसे भी देखा है हमने। केवल पढ़ना या केवल सुनना ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ब्राह्मण बनने की। ये नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं, हाफ कास्ट, शूद्र, ये तो बेसिक बातें हैं जितनी बताई। इससे अधिक कुछ करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो हम भी अपना डमरू बजाना भूल जाएंगे। निरंतर अभ्यास। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस क्लास में हम देखेंगे। ऐसी सात बातें, एक से एक, दो से दो, तीन से तीन, चार से चार, पांच से पांच, छह, छह में छह, और सात में सात। सबसे पहली बात, नंबर वन, अर्थात एक बाबा। एक नंबर की एक बातें, दो नंबर की दो बातें, तीन नंबर की तीन बातें, इस तरह से सबसे मुख्य बात है इस ब्राह्मण जीवन में एक बाबा। संसार को देख लिया, संसार के व्यक्तियों को देख लिया, उनके प्यार को देख लिया, उनके संबंधों को देख लिया, क्या मिला? धोखा, दुख, स्वार्थ। एक वही है जिसका प्यार निस्वार्थ है, जो निरंतर है, वैसा ही है जो पहले था, बदला नहीं है। बाकी सारे संबंधों में कितना बदलाहट है, जो पहले बहुत अच्छे से बात करते थे आज देखते तक नहीं, जिन पर बहुत विश्वास किया, अपना माना, वही चुरा भोग कर चले गए। ये मनुष्य है संसार के स्वार्थ से भरपूर, फिर भी हम उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सारी बुद्धि संसार के व्यक्तियों से, सूक्ष्म रीति से भी जो लगी है, वहां से हटाकर एक में लगानी। कैसे लगाएंगे? दोष दृष्टि से, संसार के दोष देखना। अनित्य है, अनित्यम मसुखम लोकम। हे अर्जुन, इस संसार के स्वरूप को जान ले, अनित्य है, सुख नहीं है इसमें, दोष है उनमें। आज प्यार करते हैं, कल नफरत करते हैं, स्वार्थ से परिपूर्ण है। लगाव से मुक्ति का क्या मार्ग है? यदि हमारा किसी से बहुत लगाव है, कैसे मुक्त हो उस लगाव से? माताएं क्या करेंगे? बहुत मोह है, जब तक उसको देखते नहीं मजा नहीं आता है। यहां है परंतु बुद्धि उधर लगी हुई है, उसी में, उसी का ख्याल। क्या किया जाए जब बहुत मोह है किसी में? तो आ का बा से मोह है, क्या करे? आ, जो बा से मोह खत्म हो जाए, देवबान हटा दो। अर्थात क्या? आत्मिक दृष्टि से देखा, 5 मिनट देखा और 1 घंटा मोह। 5 मिनट का आत्मिक दृष्टि बह गई। मोह बड़ा तगड़ा है, बहुत शक्तिशाली है, जन्म जन्म का है, मेरा है, ये भाव है। साक्षी होकर ये वास्तव में दोष देखना नहीं है, सत्य की ओर आना है। क्योंकि वो पेंडुलम होता है ना, इधर जाता है, इधर जाता है, वो इधर इतना ज्यादा चला गया है, अब उसको बीच में लाना पड़ेगा पहले। और मोह विकार की श्रेणी में आता है, जिसे हम मोह प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम है ही नहीं, विकार है। और जब तक मोह है, आगे नहीं बढ़ सकते इस अध्यात्म में। दोनों ही चीजें, यदि किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है, नफरत है, और किसी एक आत्मा में भी मोह की रगे है, हम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो सबसे पहली बात जो हम रोज सुनते हैं वो है, एक बाप से प्यार। एक बाप के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक की याद, एक में निश्चय, एक ही सर्वस्व, एक ही सब कुछ। जब ऐसी अवस्था होगी तो हल्कापन होगा। भारी विकारों ने कर रखा है, जो संबंध हमने बनाए वो वास्तव में बंधन बन चुके हैं, परंतु हम उसे पकड़े हुए हैं, संभाले हुए हैं। तोड़ निभानी, सबको प्रेम देना, स्नेह देना, परंतु डिटैच। जैसे हॉस्पिटल की कोई नर्स होती है, छोटे बच्चों का वार्ड है, 50 बच्चे हैं उस वार्ड में, सुबह जाती है, सबकी सेवा करती है, वहां पर 8 घंटा ड्यूटी है उसकी, सबको इंजेक्शन देती है, ध्यान रखती है, परंतु उसको पता है इनमें से मेरा कोई भी नहीं है, मेरा मेरा घर में है। उसको बुखार है, ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल की सेवा नहीं कर रही है, कर रही है, सबका ध्यान रख रही है, परंतु ध्यान कहाँ है? उधर। वैसे ये संसार में सभी की सेवा करनी है, परंतु ध्यान ऊपर, वो मेरा है। और भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि परमात्मा की याद दांत के दर्द की तरह होनी चाहिए। दांत का दर्द हुआ है सबको? हुआ है ना? दर्द की गोली नहीं लो, फिर देखो क्या होता है। यहीं पर ध्यान रहता है दिन रात, सारे काम करते हुए भी ध्यान इधर ही। दर्द की गोली ले लो, पेन किलर तो नहीं होगा, पर गोली न लेते हुए ध्यान सब उधर ही रहेगा। गॉड्स लव इज लाइक टू टेक, दांत के दर्द की तरह, वैसा सारा ध्यान उधर ही रहे। यहां तन वहां मन, ऐसी प्रीत निर्माण करनी है उससे। क्या ऐसी प्रीत हो सकती है? भक्ति मार्ग में हमने कितनी कितनी प्रीत थी, क्या क्या करते थे। अब ज्ञान मार्ग में क्या होगा? आंसू ही सूख गए। कितना आंसू बहाए थे भक्ति मार्ग में, अब क्यों नहीं आते? पेट ऐसा भर गया है कि बस, पहले बहुत प्यार था अब कम हो गया, पहले वैराग भी बहुत था अब कम हो गया। यह आने के बाद, वो मिलने के बाद, फिर से वही प्यार। भक्ति मार्ग की कुछ कुछ अच्छी आदतें थी जो यहां छूट गई। भक्ति मार्ग में प्रसाद लेते समय दोनों हाथ बढ़ाते थे, अभी टोली लेने के लिए एक हाथ, आधा गिर जाता है कभी कभी। तो सबसे पहली बात फिर से रिवाइज करनी है, एक का साम्राज्य है या अनेक का है। एक बहन जी थे बड़े, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे, अपने दिल में एक कुर्सी रखो, सोफा मत रखना। सोफा रखेंगे तो उसमें दो तीन लोग आके बैठेंगे, एक ही चेयर जिसमें बाबा बैठे, सोफा में तीन चार लोग आके इधर उधर से बैठ जाएंगे। एक का पाठ, एक की याद, एक से प्यार, बहुत आनंद है। सारे रस इस एक में समाये हुए हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो उसमें नहीं। मधुबन में एक तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है, ऐसे 108 संबंध बनाए थे बाबा के साथ, जिसकी हम थोड़े समय के बाद एक ड्रिल करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे यहां पर। 108, वैसे तो 8 मुख्य संबंध है, 8 में से 5 मुख्य है, 5 में से 3 मुख्य और 3 में से 1 मुख्य है। ये 108 संबंध है, बाबा क्या क्या है और वो मेरे लिए क्या क्या करता है, दोपहर में हम देखेंगे उसको भी। तो सबसे पहली बात, एक एक एक। क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है एक जगह, और हमको बहुत अच्छी लगती है वो बात, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक भाई और बहन को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं है। जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। इसके लिए पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह लिखा है, भगवान कहता है, आई गॉड थाय लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड, मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं बड़ा ईर्ष्यालु हूं, मेरे अलावा किसी से प्यार मत करना। बाइबल का भगवान कहता है कि आई एम अ जेलस गॉड, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार किया तो देख लेना, केवल मुझसे प्यार करो बस। आई द लॉर्ड थाय गॉड आई एम अ जेलस गॉड। अपने मोह को चेक करना है, खत्म नहीं तो कम से कम कम तो कर सकते हैं।
वो शॉल पूरा ऊपर से ओढ़ के चुपके से आके पीछे बैठ गए। कितनी लगन थी अमृत वेला की, ईश्वरीय मर्यादाओं की, सेवा की, हर चीज की, ये फॉलो करना है। उसी तरह मम्मा, हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि मम्मा डेढ़ मास तक बेंगलोर में थी, बहुत सारी सेवाएं की, डेढ़ मास के बाद वापस आई। मम्मा को किसी ने पूछा, मम्मा सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, कोई वर्णन नहीं। वो तो भाई जो उनके साथ था उसने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो गई। सेवाएं करते हैं परंतु कहीं नाम मान शान की चाह नहीं, अपनी महिमा हो जाए कहीं पर कुछ नहीं, गुप्त। वो मम्मा, बाबा कहते थे मम्मा धरती पर चलती है तो धरती को खुशी मिलती है, चल रही है पर चलने की आवाज नहीं, मौन मौन श्रृंगार था मम्मा का, अंतर्मुखता। फॉलो मदर फादर, ये दो बातें, और इनको फॉलो करने के लिए, सीखने के लिए, उनके जीवन से, उनके जीवन के विषय में पढ़ना, सुनना, बहुत सारे ऑडियोज अवेलेबल है, यज्ञ हिस्ट्री की क्लासेस है, उसको सुनना है ताकि यज्ञ के प्रति प्यार बढ़ जाए। कैसे दादियों ने संघर्ष किया, कैसे एक एक को कितना कितना सहन करना पड़ा, ऐसी ऐसी यज्ञ की अनटोल्ड स्टोरीज है कि जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सताया गया माताओं को, बहनों को, फिर भी हार नहीं मानी। किसी को तो एक बहन को खटिया के नीचे चार पैर और उसको उसके ऊपर रख दिया, तंत्र मंत्र किया, सुअर का मांस खिलाया जबरदस्ती ताकि ब्रह्मचर्य को तोड़ दे। ऐसी ऐसी यज्ञ की कहानियां हैं, संघर्ष, परंतु हार नहीं मानी। कुमारियों की कहानियां हैं, छोटी छोटी दादियां जो थी, कैसी कैसी एक एक की कहानी है, कितने कितने तालों में बंद करके रखा किस किस को। इतना सब किस लिए सहन किया? प्यूरिटी के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? क्या इतना प्यार है पवित्रता से, या फिर भंग हो जाती है बार बार? अव्यक्त वाणी है 15 नवंबर 2003। संपूर्ण पवित्रता, धर्मराज का रूप, कई सेंटरों पर वो पोस्टर है, वो चित्र बाबा का, प्यूरिटी अर्थात अपवित्रता, अर्थात जैसे सफेद कागज पर काला दाग। यदि हमारे जीवन में अपवित्रता है और यदि हम भगवान के सामने खड़े हो जाए तो उसको दुर्गंध आएगी हमसे, चलेगा? बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो, एक ही प्रतिज्ञा करो बस, बाकी सारी चीजें माफ, पर यह प्रतिज्ञा जरूर करो। तो दो अर्थात, दो अर्थात मम्मा और बाबा, तीन अर्थात, तीन से तीन बातें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी अर्थात अशरीरी भव। कल की मुरली, प्रश्न उत्तर में उत्तर की आखिरी लाइन, शरीर को देखने से ही विकारी ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। कहां से आते हैं विकारी ख्यालात? शरीर को देखने मात्र से। और क्या है इस शरीर में? यह चमड़ी, उधेड़ो इस चमड़ी को, देखो इसमें क्या है, कहां है सौंदर्य, काहे का सौंदर्य? इस देह में बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, हड्डी मांस मलमूत्र से भरा यह देह, उसके पीछे सारा संसार पागल है, सारा मीडिया, सारी फिल्में, सारा समाज, सारी किताबें, सारी मैगजीन विकारों से ही भरी है। और भगवान ने आकर ऐसे विकारी संसार में ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो, अमृतस्य पुत्राः, तुम वह दिव्य आत्मा हो, अमृत की संतान हो, तुम निराकारी, अर्थात बार बार अशरीरीपन का अभ्यास। कहीं पर बैठे हैं, यही बैठे बैठे अभी अशरीरी हो जाना बीच बीच में, निराकारी निर्विकारी, कोई भी विकार ना रहे, ये लक्ष्य है। वो देखने की दृष्टि आ जाए कि मुझ में ये विकार है, मुझ में ये विकार अब भी है, कोई आके बताएगा नहीं, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। दुख लेने का संस्कार, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, हीनता के भाव, ये लोग बहुत अच्छा और हम नीचे, ये अच्छा क्लास कराते हम नहीं करा पाते, ये अच्छा लिखते हम नहीं लिख पाते, इनकी हैंडलिंग पावर अच्छी है हमारी नहीं है, इनकी सेवा अच्छी है हमारी नहीं है, हम तो कुछ काम के ही नहीं है, हमारा तो चिंतन ही नहीं चलता, ये सारे हीनता के विचार है, हीन भावनाएं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी ठहराना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बड़ा हूं मैं ज्यादा पवित्र हूं, ये भी एक अहंकार ही है। अध्यात्म में सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का, हम ज्ञानी बन गए, हम क्या बन गए, ज्ञानी बन गए। भक्ति में कहावत है, ज्ञान अज्ञान क्या है, अंधकार, और ज्ञान क्या है, महाअंधकार। क्यों? यदि ज्ञान में अहंकार आ जाए तो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूं सृष्टि चक्र क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं बाबा भगवान कौन है, मैं तुमको बताता हूं आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं सृष्टि चक्र धर्म कैसे स्थापन हुए। कोर्स तो करा रहे परंतु अहंकार भी तृप्त हो रहा है अंदर ही अंदर, परंतु ये भाव कि हम केवल निमित्त है, कराने वाला वो था, हमने कुछ किया ही नहीं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक वर्णन है, जब सारी दो बार विदेश जाके आ गए, सारी यात्राएं पूरी हो गई, सोचा मैं तीर्थ यात्रा करूं, और तीर्थ यात्रा के लिए कश्मीर जाते हैं, और आ रहे होते अकेले, सभी अपने गुरु भाइयों से कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं आएगा, और आ रहे होते तो देखते एक पुराना खंडर हो चुका है, एक काली का मंदिर, और जैसे उस मंदिर में आते हैं वो पूछते इस मंदिर की हालत किसने की, लोग बताते हैं मुसलमानों ने, ऐसा क्रोध आ जाता है, ऐसा क्रोध आ जाता है, उनकी ये हिम्मत। फिर अपने कमरे में जाते हैं, रात को अपने आप को समझाते, ठीक है उन्होंने की, मैं उनको माफ करता हूं, अब मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। फिर जाते हैं दूसरे दिन, और फिर चंदा एकत्र करने लगते हैं, मिलता नहीं है, फिर घर में आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, और यह भी सोचते अगर मैं होता ना तो वो मुसलमानों को हाथ ही नहीं लगाने देता, इसको जान निछावर कर देता। तो तीसरे दिन वो देवी स्वप्न में आती है और उनसे कहती है, तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी करती हूं? डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू? तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती? और तब एकदम से उनके जीवन में समर्पण भाव आ जाता है। अब तक सोच रहे थे मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर अब यह भाव आ जाता है ये जो भी हो रहा है वो करा रहा है।
नहीं तो ज्ञान अहंकार से भर देता है, हमने इतनी सेवाएं की, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अहंकार से भर देता है। ये भाव आ जाना, होई सोई जो राम रचि राखा, जो हो रहा है वो करा रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, जैसा बाबा आप चाहे। सभी हमारी दादियों को देखो, एक संदेश है, अव्यक्त संदेश गुलजार दादी के द्वारा, उस संदेश में बाबा ने गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी दोनों को इमर्ज किया। गुलजार दादी के द्वारा संदेश में, उस संदेश में बाबा ने गुलजार दादी और प्रकाशमणि, और बाबा प्रकाशमणि दादी की बहुत महिमा कर रहे हैं, दादी आपने इतनी सेवाएं की, आपने इतना विस्तार किया यज्ञ का, ऐसे वैसे बहुत महिमा कर रहे हैं। दादी ने एक ही शब्द कहा अंत में उस संदेश में, दादी ने कहा, बाबा मैं नहीं आप, ये जो कुछ है वो मैं कर ही नहीं रहा, ये आप है, आपकी शक्ति है जो ये करा रही है, अगर आप नहीं तो हम कुछ कर पाते, यदि उसकी कृपा हम पर है तो ही हम सब कुछ कर रहे हैं। इस सभा में भी जो बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम अपने पुरुषार्थ से बैठे हैं, उसकी कृपा है इसलिए यहां है। भक्ति का शब्द है, जगदीश भाई जी करते थे, बाबा तुमको साष्टांग दंडवत निराकार के सामने साष्टांग दंडवत, क्यों? क्योंकि तू करा रहा है सब कुछ, माना ड्रामा है, माना ज्ञान की बातें है, परंतु फिर भी तेरी इच्छा है, राजी तेरी रजा में, मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलिया है, तेरे पास क्या है? बिजली। कब तेरी बिजली आकर मेरे इस महल पर गिर जाए क्या पता, कभी भी गिर सकती है, इसलिए राजी तेरी रजा में, मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलिया है, मेरे पास आशियाना, सब तेरी इच्छा से हो रहा है। ये भाव निरंकारिता लाएगा। और ज्ञानी हमेशा ही अहंकारी बन जाते हैं, हर बात का अहंकार आ जाता है, बहुत अहंकार, कपड़ों का अहंकार, बैच का अहंकार, स्थान का अहंकार, सेवाओं का अहंकार, ज्ञानी होने का अहंकार। मोहम्मद रफी ने कहा है कि ये आवाज खुदा ने मेरे कले में हलक में डाली है, वो चाहता तो यह आवाज किसी और के कंठ में भी डाल सकता था, इसके लिए महिमा मेरी नहीं है, उसकी है, उस खुदा की है, कितनी निरंकारिता है। तो ये तीन बातें, तीन में निराकारी, अशरीरीपन का अभ्यास, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, दूसरा निर्विकारी, निर्विकार के लिए प्यार, प्यूरिटी के लिए प्यार, क्या वैसा ही प्यार हमारे दिल में है जैसा मीरा के दिल में था? और निरंकारिता, अहंकार नहीं। तो ये तीन बातें, फिर उसके बाद में है चार, चार में चार बातें, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, फोर सब्जेक्ट्स। इनमें से सभी सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेने हैं, ऐसे नहीं कि सेवा में तो हमारा बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट होता है जिसका अगर मैथ्स कमजोर है तो वो ज्यादा फोकस किस पे करता है? मैथ्स पे करता है। हमें ये पता चाहिए कि इन चारों में से मेरी कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है और उस पर काम करना है। योग यदि है तो विशेष योग का अभ्यास करना है, ज्ञान यदि कमजोर है तो चिंतन को बढ़ाना है, चिंतन की विधि सीखनी है। ये एक दूसरा पेपर है, मुरली चिंतन की 108 विधियां, अलग अलग विधि से मुरली का चिंतन करना है। ये भी केवल बनाई नहीं गई है, वहां पर मधुबन में जो ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर इस पे काम किया जाता है। यह तो लिस्ट है केवल, एक मुरली चिंतन, साकार मुरली आई पढ़ ली और हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, उसकी चिंतन और किस विधि से उसका चिंतन करना है यह भी चाहिए, तो वो होगा। तो ये चार सब्जेक्ट, अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और जैसे हमने आपसे कहा था कि दादी का इस भट्टी के लिए विशेष मैसेज दादी ने रिकॉर्ड करके दिया है, कि तब दादी को पता चला कि भोपाल जा रहे हैं और यहां दादी आकर गई 9 तारीख को, 9 नवंबर, 3 दिन थे जनवरी, 3 दिन थे दादी, तो दादी का विशेष प्यार है इस स्थान से, तो योग की अवस्था में ऐसा देखेंगे कि दादी हमारे सम्मुख खड़ी है और हमसे ये वाक्य कह रही है और दादी का एक एक शब्द बहुमूल्य है, वो सुनते सुनते ही धारण कर लेना है। और जब तक ये भट्टी है, कल दोपहर तक जो भी ज्ञान की बातें हम सुनेंगे उनका भी मन ही मन चिंतन होता रहे, और मन ही मन बैठे बैठे ही संकल्प कर लेना और यहीं परिवर्तन हो जाए। यहां सुनेंगे फिर जाके बाद में परिवर्तन करेंगे नहीं, यहीं बैठे बैठे संकल्प कर लेना है परिवर्तन का। ठीक है, चलो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे सुनने में आया भोपाल में बच्ची कर रहे हो सुख शांति भवन में ज्ञान सर्व योग तपस्या, बस डॉक्टर मेरा बहुत अच्छा मीठा, ये जो ज्ञान योग तपस्या से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों आ जाती है, हेल्थ भी अच्छी वेल्थ भी ठीक, बच्ची कर रहे हो ना, ये बच्ची मानना क्या है, सब आवाजों से परे जाना, जितना हो सके आवाजों से परे जाना, तो परे जाने से क्या होता है, शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम खींचता है, और फिर जाना है सुखधाम में, सुखधाम तो अपने आप तपस्या योग तपस्या से हमारा बाबा ने भविष्य के लिए वहां रहने के लिए ऐसा बनने के लिए, सुख शांति भवन में बैठे हो बस सुख शांति, प्रेम के विग्रह नजर नहीं आता है, प्रेम प्रेम से चेहरा मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए चेहरे से बाबा की याद दिलाता है, बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा, बच्चिया की सफल हुई है, हो रही है, अंडर है ये, मैं अभी 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 जा रही हूँ, कहाँ होता है वहाँ हमारे दादी के मीटिंग हॉल में मुझे बुला रहे हैं, अच्छा है, बच्ची जहाँ तहाँ बच्ची करके अपने वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये एक हमारा ब्राह्मणों का कहें नेचुरल है, अब भी न करेंगे कभी करेंगे, अब है समय करने का, क्या करने का है, मैं कौन मेरा कौन, समझा, मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा, दामा वंडरफुल है, हर सीन न्यारी है और प्यारी है, आजकल मुझे अच्छे अच्छे चारों ओर से कोई न कोई इशारे मिलते हैं, वो दे दो तुम्हें दिखा दू, वंडरफुल है, हर एक चाहता है ऐसी स्थिति बनाओ जो मैं कौन मेरा कौन, देखो तो सही अच्छा ये किसी ने मेरे को भेजा है, हंसा देखो यहाँ ब्रेसिंग लिखी पड़ रही है ये ऐसा। अच्छा थैंक यू ओम शांति।
दादी जब पहली बार विदेश गई और 4 साल के बाद लौटी, कोई विशेष सेवाएं नहीं हुई, परंतु जो साड़ी पहन कर गई थी वही साड़ी पहन कर आई थी, और उनको देखकर ये पता चल रहा था कि वहां के 4 साल कितने अभाव में गुजरे, कितनी तपस्या में गुजरे, कैसा वैरागी जीवन रहा। एक दरवाजा था, उस दरवाजे को तोड़कर संडली बनाई गई और वही संडली रात में बिस्तर बन जाता था सोने के लिए। ऐसी सेवाओं की शुरुआत हुई लंदन में। इतना त्याग, अभी जो स्थिति और अभी जो सम्मान प्राप्त है वो उसी त्याग और उसी वैराग और उसी तपस्या का परिणाम है। दादी जानकी पर एक अंग्रेजी में किताब लिखी गई है, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, लिस हॉजकिंसन। उस लेखिका ने दादी के लिए प्रस्तावना में एक बात लिखी है। उस प्रस्तावना में लिखा है दादी के लिए, यदि एक भारतीय नारी जो कि अनपढ़ है, एक भारतीय नारी जो कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, एक भारतीय नारी जो कभी भारत से बाहर नहीं गई, अगर ऐसी नारी लंदन में अपना घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। जो लंदन में अपना घर बना सकती है, प्रस्तावना में यह बात लिखी है दादी के लिए, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस। तो हम कहां थे? 4 पर। 4 में 4 बातें कौन कौन सी? 4 सब्जेक्ट। चेक करना है मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। ज्ञान में चिंतन को बढ़ाओ, योग में अमृत वेले को और शक्तिशाली बना दो। आज से ही, अभी से ही दादी ने क्या कहा, अभी परम धाम खींच हो, परम धाम की आवाज आए वहां से कि खींच हो एकदम से, शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है। स्थूल सेवाएं बहुत कर ली, अभी सूक्ष्म स्वयं की सेवा करनी है और विश्व की, यह कार्य बाकी है, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का कार्य। और हम शक्तिशाली चिंतन से बनेंगे, योग से बनेंगे, अपनी धारणाओं को फिर पक्का करना है। कौन सी धारणा मेरी ऐसी है जो अभी भी कमजोर है? क्या मेरा अमृत वेला अब भी मिस होता है? अब भी लेट उठती हूं, उठता हूं, अब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या अब भी नींद आती है? यदि अमृत वेला ही नींद आती है तो भगवान से मिलन कब मनाएंगे? बाबा के महावाक्य, यदि नींद आती है तो आंखों में तेल डाल दो, चिमटी काटो अपने आप को। धारणाओं को पक्का करना है, ये 4 बातें। फिर उसके बाद में 5 से 5 बातें। 5 बातें अर्थात 5 स्वरूपों का अभ्यास। कौन से स्वरूप है हमारे 5? सबसे पहले आदि, अनादि, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य ब्राह्मण और फरिश्ता, बिंदु रूप। ये चक्र घुमाते रहना है दिन भर, मैं बिंदु, मैं ही देवता, इतने महान देवता मैं हूं। कुछ दिन पहले मुरली में आया था, रात को सोते समय लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, देखते देखते सो जाओ, वही स्वप्न में आएगा। सोचो हम कितने महान थे। देवता अर्थात संपूर्ण प्यूरिटी, ऐसी प्यूरिटी कि कोई देखे तो उसे देवी नजर आए, कोई देखे तो उसे दिव्य आत्मा नजर आए, किसी विकारी की इतनी हिम्मत ना हो, कि हम पर विकार की दृष्टि डाले, इतनी अपनी प्यूरिटी को बढ़ा देना है। तो बीज रूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो कौन है? हम ही है, हम ही वो देवता है, देवियां है जिनकी भक्त पूजा कर रहे हैं। और वर्तमान संगम युग संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि भगवान का दिया हुआ जन्म है, और हमारा जो अंतिम स्वरूप है फरिश्ता, वो भी पवित्र। इन पांचों स्वरूप को याद करते रहना है। हर एक के घर में वो एक चित्र ज्ञान सरोवर में मिलता है, एक तरफ ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये लगा के रख देना है और उसको देखते रहना है बार बार। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ये नशा, दादी जानकी अनुभव सुनाती है कि एक बार सुबह सुबह हिस्ट्री हॉल में पूरी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, दादी ने बाबा को इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले, तो किसी ने बताया शायद हिस्ट्री हॉल में होंगे। दादी हिस्ट्री हॉल में गई, खिड़की खोली तो देखा ब्रह्मा बाबा ना डांस कर रहा है अंदर। दादी ने कहा बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा बच्ची बाबा को नशा है कि ये शरीर छोड़ के अभी मैं मिचनू कृष्ण बनूंगा। ऐसा नशा है, ऐसा ईश्वरीय नशा चाहिए। संसार के लोग कौन सा नशा करते हैं, गटर में जाके गिरते हैं, हम भगवान की गोदी में जाकर गिरेंगे, ऐसा नशा। तो पांच से पांच स्वरूप, छह से ड्रामा की छह बातें, और इनको रिवाइज करनी। वैसे तो ड्रामा की बहुत सारी बातें हैं, पर छह ही मुख्य बातें बता रहे हैं। सबसे पहले ड्रामा विविधतापूर्ण है, ये ड्रामा वैरायटी है। ऐसी वैरायटी आत्माएं फिर नहीं मिलेगी। अच्छा है इतनी वैरायटी आत्माएं, अलग अलग संस्कार है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, परेशान तो नहीं होते ना, अच्छा है। एक ही वैरायटी सोचो, हमारे घर में हमने जो बोल दिया सब चुपचाप मान ले, हमने कहा सब सेंटर पर चलो, सबके सब सेंटर पर, हमने कहा सबके सब तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ, सबके सब तीव्र पुरुषार्थी, हमने कहा कोई मुझे आज से कुछ भी नहीं बोलेगा, किसी ने बोलना बंद कर दिया, जैसा मैं कहती हूं वैसा सब करने लगे। बच्चों को कहा बस पढ़ाई करते रहो, दिन रात पढ़ाई में लग गए। तो इसमें मजा है, वैरायटी चाहिए, ऐसी वैरायटी फिर नहीं मिलेगी। हां सतयुग में यही सारे होंगे, पर धुलाई होकर आएंगे तब तो ऊपर से, इसलिए ऐसी वैरायटी अभी ही है, मजा आता है इस वैरायटी में। और ये खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो इसका तो एंजॉय करना होता है नाटक को। लक्ष्मण क्रोधित है, ये रावण इतनी जोर से क्यों हंसता है? वो बिल्कुल क्रोध में है, मेरी मां समान भाभी को चुरा के लेके गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पर थोड़ी देर के बाद रामलीला में लक्ष्मण और रावण पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं, वो खेल था, वो खेल हो रहा है, यहां सारा ही खेल है। राम मंडली है, सजी है यहां पर पूरी सृष्टि पर, नाटक चालू है। बंगाल में विद्यासागर चप्पल नाम की एक चप्पल है, सुना है क्या? चप्पल का ही नाम है विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए थे कभी। एक बार वो रामलीला देखने गए, और रामलीला में जैसे ही रावण सीता को अपहरण करने लगे, उनको इतना क्रोध आ गया कि मेरी मां सीता और इसका ये रावण क्रोध कर रहा है, अपनी चप्पल निकाल के उस एक्टर को मारने लगे। उसने नमस्कार करके कहा कि धन्यवाद, इसका मतलब मैं अपना पार्ट ठीक से प्ले कर रहा हूं, मेरी एक्टिंग परफेक्ट है इसका मतलब। और तभी से वो चप्पल फेमस हो गई, ईश्वर विद्यासागर चप्पल, बंगाल में जाओ तो मिलेगी, चप्पल का ही ब्रांड है विद्यासागर। तो ये नाटक है, चल रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट है नाटक की, ड्रामा की। ये नाटक कैसा है? मल्टी वेरिगेटेड, विविधतापूर्ण है। उसके बाद में दूसरी पॉइंट, ये नाटक रिपीट हो रहा है, ये ड्रामा रिपीट है, कुछ भी नया कुछ नहीं है इसमें। नया क्या है? जो हुआ पहले भी हुआ था। यज्ञ के इतिहास में हापुड़ की कहानी है। हापुड़ बहुत हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ, वहां के लोगों ने सेंटर का बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, ताला लगा दिया, वहां के भाई के गले में गधे में बिठा दिया, गधे पर बिठा के घुमाया, सांप डाल दिया, इतना भयंकर विरोध किया ब्रह्मा कुमारी इसका 1950s में। हापुड़ की पूरी कहानी है कि यज्ञ के इतिहास में हापुड़ में इतना भयंकर विरोध किया, ऐसा सब कुछ किया, फिर बहुत कुछ हुआ, फिर गवर्नमेंट ने मदद की, पर यह सब हुआ, बाबा को सब पता चला, बाबा ने कहा नथिंग न्यू, रिपीट हो रहा है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ था, जो कुछ हो रहा है यहां नया कुछ भी नहीं है, रिपीट है। उसके बाद में तीसरा, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। जो भी हमारे जीवन में अब तक हुआ, कुछ ना कुछ तो कल्याण है ही उसमें, पर हम छोटी सी दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं देता है। व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा इसमें ही कल्याण था, अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। कोई एक सेंटर था तीसरे माली पर, वहां एक दादी रहती थी, आग लग गई एक बार सेंटर को, नुकसान हो गया, बच्चे पहुंच गए बाबा के पास, अब बताओ इसमें क्या कल्याण है? उसमें भी कल्याण था। वास्तव में वो सारा इंश्योरेंस किया हुआ था गवर्नमेंट में, जिन जिन घरों को आग लगी थी उन सबको नया घर बना के दिया, और वहां की जो दादी थी उसको चलते नहीं आता था, लिफ्ट नहीं थी, तो नया घर मिल गया, वो सीढ़ियां अब चलने की जरूरत नहीं और वो सारा सामान जो जला था सब मिल गया वापस, क्योंकि इंश्योर्ड किया हुआ था। ऐसी दो तीन बातें हुई थी उसमें, उसमें भी कल्याण था, हर बात में कल्याण है। तो ये तीसरी बात। उसके बाद में ये ड्रामा न्यायकारी है, यहां अन्याय कहीं नहीं हो रहा है, जो हो रहा है जन्म जन्म के हमारे हिसाब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक साधु को पकड़ लिया लंदन में, उसको कहा कि तुमने मर्डर किया है, उसने कहा अच्छा, उसने कुछ कहा ही नहीं, जेल में चला गया, 23 साल की सजा, 28 साल जब हो गए, 18 साल जब हो गए तो उसे छोड़ दिया, उसको कहा कि अरे तुमने खून नहीं किया, वो जो वास्तव में जो हत्यारा था वो पकड़ा गया है और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तो वो कहता है ये तो मुझे पहले से ही पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी है पर फिर भी ये अगर हो रहा है तो ये किसी और जन्म का पाप है, ये किसी और जन्म का पाप है। और वो कहता है मुझे अब रहने दो, मेरी अच्छी साधना चालू है जेल में, इधर ही रहने दो अभी मुझे तो ड्रामा कैसा है? न्यायकारी है। फिर ये ड्रामा फिक्स्ड है, इसमें अदली बदली नहीं होती है, ये ड्रामा फिक्स है। और लास्ट पॉइंट छठवा, ये ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा के महावाक्य है, ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए, जो बाप को पसंद वो हमें पसंद। तो ड्रामा की ये छह बातें, 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है स्थिर रहने के लिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है दिनचर्या में, ऐसी ऐसी बातें होती है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है तो मजा आएगा। जैसे महाभारत में एक ही पात्र है जो कभी दुखी नहीं होता है, श्री कृष्ण, बाकी सब दुखी होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर साक्षी है, हर बात में साक्षी है, कहीं दुखी होते हुए उसको दिखाया नहीं, आंसू बहा रहा है, ऐसा कभी नहीं दिखाया। हाँ, वो रामजी तो बहुत आंसू बहाते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता को ढूंढ रहे आंसू बहा रहे, कृष्ण को कभी आंसू बहाते सुना? कभी नहीं, वो लीला पुरुषोत्तम है। तो उसका एक पार्ट और जो सीखने वाली बात है साक्षी भाव, वो निरंतर साक्षी है, हर बात में साक्षी है, इन्वॉल्व नहीं होना है, पार्ट प्ले कर रहा है फिर भी साक्षी है। तो ये छह बातें, उसके बाद में लास्ट पॉइंट सात, अर्थात आत्मा के सात स्वरूप। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान किसका? पवित्रता का। तो आत्मा कैसी है? पवित्रता। और जहां पवित्रता है उसकी गोद में दो बच्चे खेलते हैं, सुख और शांति। इसका अर्थ यदि जीवन में दुख है और अशांति है तो पवित्रता में गड़बड़ चल रही है। पवित्रता को ठीक कर दो, दुख अशांति विलीन हो जाएगी। फिर है प्रेम, और फिर है आनंद, और फिर है शक्ति। ये सात स्वरूप है। अपने आप को याद दिलाना है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शक्ति रूपा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता मुझे। हिसार की रमेश बहन जी है, बड़ी बहन, उनके जीवन का अनुभव है। जब वो युवा अवस्था में थी, कभी एक गीता पाठशाला पर गई, रात को 11 बज गए, लेट हो गया, कोई गाड़ी नहीं, ट्रक कुछ, टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, गांव। तो वहां से एक ट्रक आया, वो ट्रक को उन्होंने रुकाया और कहा कि मुझे छोड़ दो। ट्रक ड्राइवर ने कहा आ जाओ, बैठ जाओ, और ट्रक चालू हो गया। रात को 11 बजे का समय और वो जा रहे हैं, और वो ट्रक वाले की बुद्धि बदल गई, दुर्भाव जाग उठे, और उसने रास्ता बदल दिया और कहीं और ही लेके जाने लगा। और इनको पता चल गया कि ये तो रास्ता गलत है, और तुरंत बाबा को याद किया और समान में स्थित हो गई, मैं अष्ट शक्तिधारी दुर्गा हूं। बिना उसको कुछ कहे, पता था ये कहीं और लेके जा रहा है, रास्ता ये तो है ही नहीं, और रात का कोई नहीं है, सुनसान रास्ता। ऐसी पावरफुल याद बाबा की, और समान में जैसे स्थित हो गई, मैं अष्ट भुजाधारी दुर्गा हूं, सिंह वाहिनी दुर्गा हूं। और चलते 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 ही एकदम वो जो भाई था ड्राइवर, शायद थोड़ा दारू पी के था, एकदम जैसे उसको कुछ हो गया और होश में आ गया वो, और एकदम उसने ट्रक रुकाया और चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी कुदृष्टि हो गई थी। और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में साक्षात दुर्गा देवी बैठी है, और मुझे ऐसा एक पल के लिए अनुभव हो गया कि जैसे जगत जननी मां ही मेरे सामने बैठी, बाजू में बैठी है। ऐसा स्वरूप का उसको साक्षात्कार जैसे हो गया, साक्षात्कार तो नहीं कहेंगे, अनुभव हो गया। उसने ट्रक रोका, माफी मांगी और कहा कि मैं अब आपको छोड़ दूंगा, और वो सेंटर तक ट्रक लेके गया और वहां छोड़ दिया उसने। तो ऐसी ढेर सारी घटनाएं यज्ञ में है। तो ये अभ्यास है अपने स्वरूप का, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं कमजोर नहीं, मैं निर्बल नहीं। अमृतस्य पुत्राः आये धामिनि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम् आदित्यवर्णम् तमसा परस्तात्। आदित्य सूर्य की तरह तुम्हारा प्रकाश है, तमस को परास्त करने वाले तुम हो, तुम अमृत की संतान हो। तो ऐसी ये सात बातें। तो ये पुरुषार्थ के मौसम में इतनी बातें, कितनी होगी टोटल? सात नहीं हुई, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, ऐसी कितनी हो गई? 27। तो सबसे पहली बात बताई, एक बाबा, एक अर्थात एक बाबा, दो अर्थात मम्मा और बाबा। जिन्होंने इनके जीवन की कहानी नहीं पढ़ी है वो पढ़ेंगे। तीन अर्थात निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, इन तीनों चीजों का अभ्यास। चार अर्थात चार सब्जेक्ट है, हम गॉडली स्टूडेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट कमजोर है अब उसकी ट्यूशन लगाओ, देखो उसमें कोई स्पेशलिस्ट है तो उससे थोड़ा सीखो और उसको ज्यादा टाइम दो। पांच अर्थात पांच स्वरूपों का अभ्यास निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। ये आत्मा में कट चढ़ी है, जो ज्यादा से ज्यादा पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे पूर्व जन्म की सारी स्मृति आ जाएगी, हम क्या क्या थे वो सब दिखने लगेगा, क्योंकि सब कुछ यहां रिकॉर्डेड है, वो दिखाई देने लगेगा, देवता ही स्वरूप सब कुछ। छह अर्थात ड्रामा की छह बातें। पहला, ड्रामा विविधतापूर्ण है। दूसरा, ड्रामा रिपीट होता है। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा न्यायकारी है। ड्रामा फिक्स्ड है। ड्रामा एक्यूरेट है। और ढेर सारी है इसमें, ड्रामा सत्य है, ड्रामा भगवान को पसंद है, और आप ऐड करते रहना। और साथ में आत्मा के साथ स्वरूप। और एक चीज इसमें सूक्ष्म है, यदि मैं शांत स्वरूप हूं तो ये जिसको मैं देख रहा हूं वो भी शांत स्वरूप है, ये जो मेरे घर वाले हैं वो भी शांत स्वरूप है। जैसे कोई माता हमसे कभी कह रही थी, मेरा पति जो है ना इतना दारू पीता है, और उसके लिए मैं क्या योग करूं ताकि वो ज्ञान में आ जाए। और उसकी बातों से ये पता चला कि उसका उसके युगल के प्रति बहुत घृणा है। क्या जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है और ऊपर से तो कह रहे हैं कि वो ज्ञान में आ जाए, तो आएगा? कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। उसके प्रति भी वो भाव जागृत करने पड़ेंगे कि वो भी महान आत्मा है। जैसे एक माता है और उसका पति ने 20 साल तक उसको तंग किया पवित्रता के लिए, 20 साल तक उसका विरोध किया, 20 साल तक उसको सेंटर में जाने से रोका या क्या कुछ नहीं किया, और 20 साल के बाद ज्ञान में आ गया। अर्थात वो 20 साल में भी वो देवकुल की ही आत्मा थी, ठीक ही नहीं थी कि अचानक आ गई? नहीं, तब भी वो देवकुल की थी। तो दृष्टि के प्रति दृष्टि भी हमारी महान हो, ये भी प्रेम स्वरूप, ये भी शांत स्वरूप, ये भी ज्ञान स्वरूप, ये भी आनंद स्वरूप। सब वर्तमान संस्कार नहीं देखने, अनादि आदि संस्कार देखने हैं सबके। अच्छा, तो अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फिर से योग में बैठेंगे और जो सात बातें बताई मन ही मन एक बार रिवाइज करेंगे। ओम शांति।